जन्म से पहले करती है, उसका आपस और पहले से ही नदी हो ऐसा प्रेम है तो ऐसा होती है। अच्छा मेरे सन भी अवग्रह के लिए जरूरी है। अवग्रह को जो हर साल जोड़ते हैं वो सफेद अलग ये खाली ऐसे ही सरकारी अधिकारी वगैरह के लिए एक बहुत बड़े काम के लिए और बहुत बड़े मकसद के लिए अवग्रह को जोड़ते हैं। आप बच्चे अपने घरों में शायद ये बात होंगे उसमें कुछ दिन घटेंगे बच्चे उनको खाली कर देंगे खाली दिन आपको मुस्तकिल अलग से जोड़ रहे हैं और आपसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। क्यों असल बात जरूरी और खैर खाही है क्या है बोलो इसके लिए हम दर्दी और खैर खाई इस उम्मत में जितने तबके हैं वो सारे तबकों के लिए इस उम्मत में हम दर्दी और खैर खाई है। इस उम्मत में पढ़े लिखे अनपढ़ शहरी देहाती छोटे बड़े सारे तबकों के लिए इसलिए दुनिया में जब नबी थे तो नबी सारे तबकों की हमदर्दी करते थे। अब नबी नहीं है तो दीन की मेहनत के रास्ते से सारे तबकों की हमदर्दी की बात होती है। अपने सारे तबकों से अलग अलग मौकों पर मुलाकातें करते हैं, कभी मथुरा से, कभी अरबी तलबा से, कभी हवा से, कभी औलमा से, और आपसे उन सबसे जैसे बात होती है ऐसे आपसे भी बात होती है। और आपसे आपको भी जमा करना होता है और आपसे जो बात होती है वो बड़ी अहम है। क्यों हम हैं क्या बोला जिस लाइन पर जा रहे हो पढ़ाई की लाइन पर वो हालात के अतबार से बड़ी लाइन कैसी है बोलो बड़ी लाइन। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप कौम के आगे जाकर बड़े बन कैसे बनेंगे बोलो अल्लाह को बड़े बनाएंगे और उम्मत का अमूमन जो मजमा हमारे ये पढ़े लिखे अतबार से जोड़ जाता है और उनसे जोड़कर जिंदगी गुजारता है। गाँव के वही वो लोग बनते हैं, गाँव के चौधरी बनते हैं, गाँव के लोग उनको खुशने वाले बनते हैं। गाँव के सारे काम ये लोगों के जरिए से होते हैं। हमने देखा हमारे वडोदरा में हमारे जितने मस्जिद मदद से थे उसके अक्सर पे ट्रस्टी पढ़े लिखे लोग ये तो अब अलग अलग किस्म के लोग आना शुरू हो गए वरना तो वही लोग माशाल्लाह मस्जिद भी चलाते थे मदरसे भी चलाते थे। अब सब जगह काम करने वाला अगला तैयार हो गया इसलिए और भी उनके मां बन गए वरना गाँव के सारे काम ये लोग करते हैं। बाप दादा जो है आप अपने हिसाब से अभी बच्चे बच्चे हो उनको शायद मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि बचपना है इसलिए भी की बातें समझ में नहीं आएगी लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा पास माशाला आपको इज्जत देंगे अल्लाह को बढ़ोतरी देंगे और अल्लाह तला से काम लेंगे। बाप दादा से जो खास बात करते हैं वो इसी अहमियत की वजह से ये हमारे बच्चे हैं कि आगे जाकर बड़े बनेंगे तो ये अच्छे बड़े बने कैसे बड़े बने बोलो अच्छे बड़े बने। देखिए बड़े बनने वालों में दो किस्म के लोग होंगे एक बड़े बनने वालों में वो लोग होंगे जो समाज को गलत रुख पर ले जाएंगे बुरे बड़े बनेंगे कैसे बड़े बनेंगे बोलो बुरे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब हम कौमों को और बस्तियों को पलटा खिलाते हैं और उनको गलत रुख पर उनको हलाक करना चाहते हैं तो फसाद उनके बड़ों से आता है। अमर मुतरफी है फसा सकूफी है ये गाँव के जो चौधरी होते हैं बड़े होते हैं उनके रास्ते से उनके छोटों में बात चलती है। समाज के बड़े गाँव के बड़े उनके रास्ते से छोटों में बात जाती है और जो गाँव के बड़े होते हैं उनका वजन होता है। अमर अरबी में महावत है कलामुल कलाम ये जो बड़े होते हैं उनकी बात भी बातों में बड़ी होती है जो बड़े होते हैं उनकी बात भी बातों में बड़ी होती है उनका वजन होता है। अगर वो अच्छी विचारधारा के लोग हैं तो सबको अच्छी विचारधारा पर ले जाएंगे और खुदा न करे अगर वो गलत विचारधारा के लोग हैं तो पूरे पूरे घड़े को वो गलत रुख पर ले जाएंगे एक आदमी सबको गलत ले जाएगा। हम लोग जैसर मिल गए जैसर में और जैसर मिल गए हम लोग मिले वो नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज भी नहीं पढ़ते थे और शाम को तस्वीर खाली पड़े तो हमने उनको समझाया मस्जिद में आ जाओ तस्वीर नमाज पढ़ो। उन्होंने उन्होंने कहा हमारे बापू ने उनको कहा कि तुम बस इतना करो तुम्हारे काम हो जाएगा। हाँ अब बापू को देखने गए तो वो पीर वगैरह पड़ोस के मुल्क में पीर है उसका खलीफा था तो वहाँ का बड़ी बड़ा है उसका नाम ही पीर वगैरह तो उसके सारे मुरीद तो उसने सलाम खत्म कर दिया सलाम नहीं अपने हाथ जोड़ कर कहने का साईं 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 वो ऐसा करते थे। ये सारे लोगों को एक आदमी ने गुमराह कर दिया। कितने आदमी ने बोला एक आदमी ने सबको गलत कर दिया। अब जिस दिन ये आदमी मरेगा अल्लाह उस पर रहम करे ये सारे लोगों की बुराई अपने कंधे पर लेकर जाएगा। किताबों में आता है जो बुरा बनेगा वो और जो बुराइयों के वजूद बनाने का जरिया बनेगा वो उसके बाद जितनी बुराइयां दुनिया में चलेंगी वो सारा वबाल बुराई चलाने वाले के कंधे पर जाएगा। तो जो बड़े होते हैं उनके साथ समाज जुड़ी हुई होती है। अगर वो अच्छे होते हैं तो हजारों लोगों को अच्छा बना देंगे और खुदा ना करे वो गलत हो जाए तो हजारों लोगों को गलत कर देंगे। और समाज के जो बड़े होते हैं ये मजमा होता है। आप दोस्तों इस अहमियत की वजह से स्पेशल जोड़ते हैं और जोड़ कर इसके फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छे बड़े बने। कैसे बड़े बने बोलो। अच्छे बड़े बनने के लिए बचपन में इनकी अच्छी घड़तर हो जाए इनकी अच्छी तरबियत हो जाए। इनका क्या हो जाए बोलो अच्छा घड़तर हो जाए अच्छी तरबियत हो जाए। ये बचपन में जो अच्छी तरबियत हो गई अच्छा घड़तर हो गया तो पचपन भी अच्छा हो जाएगा। जिसका बचपन अच्छा है इसका पचपन भी अच्छा हो जाएगा। ये हर आदमी को अपनी जात को समझने की चीज है कि मैं कैसा बन रहा हूँ अभी को समझने की चीज है। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते कि इन बातों को समझने का हमारे वहाँ माहौल नहीं क्या नहीं है बोलो माहौल नहीं। पैसे कमाने का जो माहौल होता है तो छोटा मजदूर भी जाता है वो सोचता है मुझे क्या मिलेगा वो सोचता है मुझे मजदूरी में क्या मिलेगा। अगर वो उसको संतोषकारक ना मिले तो मजदूरी वहाँ नहीं करेगा दूसरी जगह चला जाएगा। वो ऐसा करता नहीं करता कि जहाँ इन चीज़ों के समझने का मौका होता है वहाँ लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तुम बच्चे हो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ कि अभी मौल सब क्या बातें करते हैं हम ऐसा करेंगे। मैं आपको बताऊँ अभी तुम्हारे जितने उस्ताद हैं शिक्षक है जितने समाज के बड़े लोग हैं वो किसी जमाने में तुम्हारी तरह बच्चे थे। किसी जमाने में कैसे थे बोलो तुम्हारी तरह बच्चे थे। अब वो बड़े बन गए कोई डॉक्टर्स बन गए कोई इंजीनियर्स बन गए कोई वकला बन गए कोई टीचर्स बन गए सब अब समाज किसी न किसी जरिए उनसे जुड़ी हुई है। अब जो उस्ताद बनता है स्कूल पढ़ाने वाला अब उस्ताद बनेगा कितने साल में 25, 26, 27 साल में वो उस्ताद बनेगा। 60 साल तक वो स्कूल पढ़ाएगा कितने साल तक बोलो 60 साल तक। उसके पढ़ाने का जमाना उसकी आधी जिंदगी होती है। कितने जिंदगी 60 साल में 30 साल मान लो उसने पढ़ाने में गुजार दिए 30 साल पढ़ाने में गुजारे। अब 30 साल में हर साल उसके पास बच्चों की बैच जाएगी एक क्लास दूसरे क्लास हर साल। अगर ये उस्ताद अच्छे विचारधारा का है तो इसके पास पढ़ने वाले हजारों बच्चे 30 साल में होंगे। कितने बच्चे होंगे 30 साल में कितने बच्चे होंगे हजारों। ये एक अच्छा आदमी हजारों बच्चे बनाने की कोशिश में लगा रहेगा। और अगर वो अच्छी विचारधारा के आदमी नहीं है तो दो 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 गलतियां उससे होगी। पहली गलती क्या होगी कि हजारों बच्चे जो उसके साथ पढ़कर जा रहे हैं कि हजारों बच्चों को वो उसको सही ताकत जो बच्चों पर लगानी चाहिए वो नहीं लगाएगा तो बच्चों का भावी खराब करेगा। एक तो बच्चों का क्या करेगा भावी खराब करेगा हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बनेगा। दूसरा उसको जो करना था वो उसने नहीं किया तो अपनी कमाई को भी हराम के बजाय मशकूक कर देगा। हम लोग हमारे वहाँ एक स्कूल में पढ़ने जाते थे कलाड़ी पढ़ाने आते थे तो वो जितनी देर आवे ना तो वो सुई धागा लेकर आवे और वो पता नहीं कांपती रहती थी वो छल्ली बनावे में ये बनावे टोपी बनावे वो बैठी बैठी स्कूल में हमको क्या पढ़ाती वो बैठी बैठी ऐसा ही करती रहती थी। ये कौन से करेगी क्या जिसको ये पता नहीं है कि मैंने ये टाइम स्कूल के लिए दिया है जो मैंने टाइम स्कूल के लिए दिया वो मेरे बच्चों के लिए है। अगर उसमें मैंने कमी की तो वो पैसे मेरे लिए कितने हजार लोगों को पूछेगा। हमारे वहाँ देवबंद में पुस्तक थे तो वो मदरसे में जा रहे तो कोई उनसे मिलने आ रहे ना तो घड़ी देखे अच्छा इतने बजे मिलने आया तो वो नोट कर लें फिर वो मिलकर जा रहे तो फिर नोट करें कि 5 मिनट मैंने ये टाइम मदरसे को दिया था उसमें से 5 मिनट मैंने अपनी जात के लिए वापस दिया तो 5 मिनट मुझे मदरसे को देना था मैंने अपने लिए वापस दिया तो वो लिख ले रहे। फिर दूसरे दिन कोई जरूरत पड़े तो ऐसे तो पूरे महीने की ऐसी टाइम गिने कि ये पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ ये मुझे स्कूल को देना था मैंने अपने लिए वापस दिए इतने पैसे मैं नहीं खा सकता। फिर वो महीना हो गए जितने पैसे मदरसे को जमा करा दे इतने हमारे अंदर। आज के ज़माने में हम देखें कि टीचरों का मामला कि उसमें अगर उसने ये चौकर में नहीं रहा तो इस वजह से खयानत उनसे होगी अब उनकी कमाई उनको भी लेट उगेगी और उनकी ज़िंदगी हजारों की जिंदगियों को बर्बाद करेगी। बोलो होगा नहीं होगा। معاشرے کا ایک وکیل ہے, وکیل معاشرے میں لوگ ان کے پاس کیسز لے کر جائیں گے. اگر اس کے اندر امانتداری نہیں ہوئی اور دیانتداری نہیں ہوئی اور اس کا اچھا گھڑتر نہیں ہوا تو دو بڑے بڑے اس سے گناہ ہوں گے. کیا گناہ ہوں گے؟ کہ صحیح کا تو ساتھ ہر آدمی دیتا ہے لیکن آج کے وکلا غلط کا ساتھ دینے کے لیے بڑی فیس لیتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر کیس تو ہے لیکن ہم تمہارا کیس لڑیں گے جتنی اتنی فیس لگے گی. ہم دہلی میں تھے, ایک وکیل کا بتایا کہ ایک حاضری کے 8 لاکھ روپے لیتا ہے. کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ روپے ایک حاضری کے لیتا ہے. اور اس میں کیسے لوگوں کی لڑائی لڑتے ہیں؟ وہ جن پر کیس ہو گئے مقدمے آ گئے, اب ناحق چھڑانے میں ان کی طاقت لگ رہی ہے, ان کو ناحق چھڑانے میں. تو ایک تو ناحق لوگوں کا ساتھ دے گا تو اللہ ان سے ناراض ہوگی, دوسرا ناحق کا ساتھ دے کر اپنی کمائی کو حرام کر دے گا. بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ایک وکیل ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہے. اب ڈاکٹر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام رکھا کہ ایک بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنے فرشتے بولو؟ 70,000. لیکن اگر وہ ڈاکٹر وہ بچہ بڑا بندے بندے ڈاکٹر ہوگا نا, اس کے اگر یہ جذبہ بنے کہ میں ایک بیمار کی عیادت کروں گا تو مجھے 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا ملے گی, تو دن بھر میں میرے پاس کتنے ڈاکٹر آتے ہیں. اگر میں اس کے جذبے سے پیش آؤں تو میری کتنی بڑی آخرت بنے گی. اگر اس کا یہ جذبہ ہو تو پھر وہ ڈاکٹر اپنے آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر نہیں سمجھے گا. آج تو کیا تمہیں تو کسٹمر آ گیا, گراہک آ گیا, گراہک سے نفع اڑاؤ. تو پتہ نہیں کیسے کیسے کر, تو کوئی بات نہیں, وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ تو پیسے دے کر چلا جائے گا, اس کی مجبوری ہے پیسے دے کر چلا جائے گا. لیکن اس معاملے میں جتنی ناحق چیز ہوئی ہے تو وہ ناحق ناحق ہی ہے. اور اچھے کا نتیجہ اچھا اور برے کا نتیجہ برا. اب اس کو اس کے برے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ہاں ہم لوگ ایک جگہ پر گئے دوا خانے میں, ایک ملک میں, تو اس کا ڈاکٹر ایشین تھا, تو اس کو پیسے دینے لگے کہ پیسے لے لو آپ نے ہمارے کلا صاحب کا اچھا کام کر دیا. تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میرے گئے تم دعا کر دو. وہ چلے کیا دعا کرنے کی؟ تو کہنے لگا یہ میری چھوٹی ہے نا لڑکی, مجھے ایسا کہہ دیے تم گھر چھوڑ کر چلے جاؤ, میں اس گھر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نفرا نہیں ہوگا. اب اس کا دعویٰ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بازو سنبھال لیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو کرنے کی چیزیں تھی وہ تم میں نہیں تھی, اب یہ بلا تمہارے سر پر آئی ہے. مالدار ہے, گھر ہے, بنگلے ہیں, پیسے ہیں, لیکن گھر ہوتے ہوئے گھر نہیں ہے, بچے ہوتے ہوئے بچے نہیں ہیں, عذاب آ گیا بچوں کا عذاب. یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ جوڑتی ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے, آپ لوگ آگے جا کر ان سب چیزوں پر جاؤ گے, کوئی ٹیچر بنیں گے, پتہ نہیں کون کون کیا کر رہے ہوں گے. یہ تو اللہ کی مدد کے راستے سے آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو اچھے دن دیکھنے کے لیے برے دن نہ دیکھیں گے. کیسا دن دیکھنے کے لیے بولو؟ اچھا. یہ ہمارے بچے آگے جا کر اچھے بڑے بنے. کیسے اچھے بڑے؟ کیسے بڑے بنے بولو؟ اچھے بڑے بنے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کہ ان کی دو چیزیں اس پڑھائی کے زمانے میں ہو جانی چاہیے. کتنی چیزیں بولو؟ دو چیزیں, ایک اچھا پڑھتا ہو جائے اور ایک اچھا گھڑتا ہو جائے. ایک اچھا بولو بڑھتا ہو جائے, اچھا بڑھتا ہے تو ان کے اندر سمجھ میں جا جائے گی اور ماشاء اللہ اپنے لائف میں ماسٹر ان کر اور لوگوں کو صحیح روپ سے اس کی ڈلیوری کریں گے. اور اچھا بڑھتا ہو جائے گا تو لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک تو فائدہ ہی ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جس سماج جب ان کے ساتھ جڑے گی تو یہ سماج کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے, سماج کے وڈیلے بنیں گے تو سماج کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے. اگر ان کے ذریعے سے سماج اچھے رخ پر چلی گئی تو یہ ہزاروں لوگوں کو اچھی زندگی رہنے کا ذریعہ بن جائے گی. اس کے لیے آپ حضرات یہاں جوڑتے ہیں. کیوں ابھی جوڑتے ہیں؟ بچپن میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی بچپن کا زمانہ ہے, ہم بڑے ہو کر ایسا کر لیں گے. نا, یہ دھوکہ ہے. جو کچھ کرنا ہے وہ بننے کے زمانے میں کر لو. یہ تمہارا زمانہ بننے کا زمانہ. کیسا زمانہ ہے بولو؟ بننے کا. بننے کے زمانے میں اگر اچھے دیکھا گئے تو اچھے بن جاؤ گے, اور اگر بننے کے زمانے میں اچھے بننے سے رہ گئے تو کچا پن ہمیشہ رہے گا. کیسا کیسا ہمیشہ رہے گا؟ کچا پن. میں آپ کو ایک مثال دوں, حضرت مولانا کرم اللہ مثال دیتے تھے کہ جو آدمی بننے کے زمانے میں خراب ہو گیا وہ ہمیشہ خراب رہے گا. سر مثال کیا دیتے تھے کہ بھائی امی کے پیٹ میں بچہ بنے گا, ٹھیک ہے, وہ بچے کی پیدائش ہو گئی لیکن پیر نہیں ہے اس کا, اس کا ہاتھ نہیں ہے, اس کی آنکھ نہیں ہے, اس کا کان نہیں ہے, وہ پہلا بڑا ہو گیا, پیدائشی اپاہج ہو گیا. اب وہ ماں سب ڈاکٹروں کے پاس نکل کے میرا بیٹا ایسا پیدا ہوا, میرا بیٹا ایسا پیدا ہوا, اس کا اچھا کر دو. وہ ڈاکٹر اچھا کر دیں گے اس کو؟ ارے بولو اچھا کریں گے. کیوں؟ کہ یہ بچے کو جہاں اچھا بننا تھا امی کے پیٹ میں اس کو اچھا بننا تھا, یہ تو وہی خراب ہو گیا. کسی کا ہاتھ لولا ہو گیا, کسی کا ہاتھ تنگا ہو گیا, کسی یہ بننے کے زمانے میں خراب ہو گیا. کہ جو بننے کے زمانے میں خراب ہو گیا اس کے بننے کا کوئی راستہ ہی نہیں. ہماری روٹی بنتی ہے کون سے, کس پر بنتی ہے روٹی, کس پر سیکھتے ہیں ہم لوگ؟ توے پر. اگر یہ روٹی کے بننے کی جگہ توا ہے. جو روٹی توے پر جل جائے, خراب ہو جائے, अब नीचे उतारो वो तभी तो रोटी सही होगी भाई। अरे बोलो सही होगी क्यों? ये रोटी कहाँ खराब हुई? ये रोटी उस जगह खराब हुई है जिस जगह उसको अच्छा बनना था। ये रोटी कहाँ खराब हुई बोलो? अरे बोलो कहाँ तो खराब हुई? अच्छा बनना था। ऐसे अगर हमारे स्कूल का जमाना ये बनने का जमाना है, अगर इसमें कोई खराबी घुस गई तो समझ लो जिंदगी भर उसको भुगतनी पड़ेगी। कैसे भुगतनी पड़ेगी? हम तो बुराइयां करके भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, हमने मौज सपाटे कर दिए, मौज मस्ती कर ली, दोस्तों के साथ इधर उधर का किया, लेकिन फरिश्ते दिख रहे हैं। फरिश्ते क्या कर रहे हैं बोलो? जब बच्चा मालिक हो जाता है तो उसकी अच्छाई भी सारी लिखते हैं और उसकी सारी बुराई भी लिखते हैं। अब इसको भुगतना कब पड़ेगा? भुगतना कब? उसके वक्त आएगा तब भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी किया तभी कभी भुगतो, कोई बात नहीं, अल्लाह के वहां सब बातें नोट हुई है, वक्त आने दो सब बढ़ता जवाब आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लोगों से तो बेचारे ऐसे ऐसी बातें कहते हैं हमारा ये है हमारा ये है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह किसी पर भी जुल्म, ये जिसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसने जो न करने की चीजें की थी उसका बदला वो भुगत रहा है। क्या भुगत रहा है बोलो? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इंसानों को जो कुछ पहुंचे वो उनके हाथों की कमाइयां हैं। बेमान कसबा कैदी को, कि तुमने जो किया है उसका तुम्हें बदला मिल रहा है। अब जब कर 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 जब जिस जमाने में किया था उसको समझ भी नहीं थी, उनको हमको ना समझ की तरह थे, तो वो तुम ना समझ रहे हम क्या करें? 15 साल में सारी चीजें तुमने सीखने की समझ पड़ी और जो सीखने की चीज थी वो तुम अनजान बन गए कि हमको नहीं आता, ऐसा करके तुम अनजान बन गए। रास्ते पर जाते हैं तो समझ जाते हैं ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, लाल सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, सब समझ पड़ी थी और उसमें तो कोई भूल नहीं बनी। और इस मामले में तुम ऐसा क्यों कह देते कि हम क्या करें, हमको किसी ने सिखाना है? भाई हमारी उम्र ये जो है वो खुद अपनी समझ से सीखने की उम्र है। इस उम्र के बच्चे दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं। क्या करते हैं बोलो? बड़े बड़े काम करते हैं। हाँ हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज हमारी उम्र के बच्चे बच्चियाँ उड़ाती हैं, दुनिया में रेल चलाती है, पर बड़े बड़े काम करते हैं और हम ये कहें हमको समझ नहीं पड़ी थी। तो कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं समझेगा और ना समझ लेगा तो वो जो करेगा उसके नाम में लिखा जाएगा। फिर जब थोड़ा वक्त गुजरेगा ना तो उसके किए का उसको भुगतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? उसके किए का भुगतना पड़ेगा। हमारे बच्चों को ऐसी चीजें ना भुगतनी पड़े और इन चीज़ों से बचकर ये अच्छे बड़े बने। कैसे बड़े बने बोलो? अच्छे बड़े बने, इनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए, इनके आखिर भी अच्छे हो जाए। इसके लिए ये रास्ते से बच्चों को अपने पढ़ने के जमाने में संभल कर पढ़ने की बात समझाई जाए। कौन सी बात करो? संभल कर पढ़ने के बाद, वरना पढ़ने के जमाने में ऐसे गुनाह हो जाते हैं अल्लाह के गुनाह, अल्लाह के गुनाह। फिर वो मिटते नहीं है, वो बाबा जोड़ा लेकर आते हैं, वो कोबरा करता है ना दीवार पर उखड़ेगा, फिर वहाँ का प्लास्टर भी लेकर उखड़ेगा। कैसे? वो चीज़ें हमारे पर चौटेगी ना तो हमारी जिंदगी का सुख लेकर उखड़ेगी, हमारा सुख खत्म कर देगा। इसके लिए हमारे बच्चों को बात समझाई जाती है। उसमें क्या समझाया जाता है? पहली बात ये समझाई जाती है कि अपने पढ़ने के जमाने में हम मुसलमान हैं इसका एहसास हमारे अंदर है। हम कौन है बोलो? हम मुसलमान हैं। बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं सफरों में, लोग सफरों में जाते हैं ना तो हवाई जहाज में होते हैं, ट्रेनों में होते हैं और स्कूल कॉलेजों में अपने इस्लाम में रहने में शर्म महसूस करते हैं। अपने इस्लाम को जाहिर करते हुए शर्म आती है, वो गैरों की तरह रहते हैं, गैरों की तरह रहते हैं। बहुत सारे हम लोग एक मतलब रुपया लेकर मेहनत की गए, एक प्रोफेसर साहब से मिलने गए ना तो उन्होंने अब वो इकराम के लिए पानी मंगवाया तो छोकरी जो उनकी थी उसका नाम था दीना, तो कहा दीना पानी लाओ, वो पानी लाई। मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि मुसलमान और दीना कैसे हो गया? तो मैंने कहा मुसा हमको तो शर्म आती है मुसलमान बनकर रहने में, हमको यहाँ ऐसे दोनों की तरह रहते हैं, और मैंने छोकरे का नाम दीना किया है और एक का नाम मीना किया है, ये ऐसा क्यों किया ना? हम तो ऐसे रहेंगे, हमको तो अच्छा नहीं लगता, हमको बस ऐसे बनकर रहेंगे। तो फिर ऐसे बच्चियाँ तुम्हारी ऐसे चली जाएगी ना, हमको दूसरी जगह की जब हम जाएंगे ना रिटायर्ड होगा तो दीना को मदीना कर देंगे, मीना को मामीना कर देंगे, वो ऐसा कहना। तो ये हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा मास्टर साहब ये दीना जो है दीना मदीना जैसी रहेगी तो मदीना करोगे, वो दीना जैसी हो जाएगी कैसे मदीना करोगे, और मीना अमीना जैसी रहेगी तो अमीना करोगे, वो मीना जैसी हो जाएगी कैसे अमीना करोगे। बच्चे सच बच्चे अपने शर्म पर हम इसमें न शर्म करें, हम मुसलमान हैं। अगर किसी आदमी को पूरी दुनिया मिल गई और उसमें इस्लाम नहीं है, वो गए एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास राय के दाने के बराबर ईमान है اگر پوری دنیا کا وہ بادشاہ بن گیا اور اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے تو اللہ نے کہا اس کے لیے جہنم کی بھٹی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو بے ایمان ہو گیا, جو بے ایمان, اس کی نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دیں گے, مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں سوائے جہنم کے. اللہ اس سے بچائے. ہم ایسا سے کمتری میں شکار نہ ہو. ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اور اللہ کے زمین پر سب سے زیادہ عزت والا وہ ایمان والا ہے. ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا زمین پر جاتے رہے گا, اللہ قیامت کو نہیں لائیں گے. اس لیے احساس کے ساتھ رہے, اپنے اسلام پر شرم محسوس نہ کریں. ہاں ابھی ہم لوگ آ رہے تھے اسی گزشتہ مہینے میں دلی میں جوڑ تھا, تو ہم لوگ آ رہے تھے, ہم نے ایئرپورٹ پر نماز پڑھی, تو ایک آدمی نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. تو میں تو بہت شرم کرتا تھا ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے میں, لیکن تمہاری وجہ سے میں نے پڑھ لی. تو میرے کو اپنا چھاتی میں لگ رہا تھا, یار یہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا لوگ ننگے ناشتے, تم کو کوئی نہیں کہتا, ہم کو کیا کہہ دیں گے. ہاں ہم ہمارے ساتھ سمجھ لوگ کیا کہیں گے, لوگ پتا نہیں کیا کیا کہتے تھے, کوئی کچھ نہیں کہتا, اور ہمیں کیا کہہ دیں گے. ہمیں بہت تک کوئی کہیں کہنے والا نہیں ملا, ساری جگہوں پر نمازیں پڑھی, کبھی کوئی کسی نے اب اس میں کیا کون کہے گا, بلکہ لوگ احترام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ذہن میں رکھے, ہم ایمان والے ہیں, اپنی عزت اسلام پر ہمیں فخر ہو, ہم ذلت نہ سمجھیں. ایک تو ہمارے دوسری بات, اللہ کی نگاہ میں عزت دلانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے, سب سے زیادہ عزت دینے والی چیز. کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس مسلمان میں سے نماز نکل جاتی ہے وہ مسلمان اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے. یا اللہ, جو مسلمان اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے پھر اس کا رہ کون گیا, اس کا رہ کیا گیا. اسکول میں جاتے ہیں, پرنسپل کہتے ہیں کہ یہ چھوکرا میری ذمہ داری میں, کوئی واندہ نہیں. وہ چھوکرے کو وٹ آ جاتا ہے, میری ذمہ داری میرے پرنسپل نے لے لی. کوئی گاؤں میں کوئی کلیکٹر ذمہ داری لے لے آپا مہاراج سے, تو اس کو وٹ آ جاتا ہے یوں کہ کلیکٹر اپنے اللہ کہتے ہیں جو نمازی ہو جاتے ہیں وہ میری ذمہ داری میں ہے. کیوں لو, اس کا کیا مطلب, اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ اب کرے گا نا تو اس کا براہ راست بدلا اللہ دے گا. کون دے گا بولو, یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اس لیے سب سے دوسری بات جو زندہ کرنی ہے وہ نماز کو زندہ کرنی ہے. ہمارے بچے سارے نمازی ہو گئے, جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھو نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں, کسی حال میں بھی معاف نہیں, بیماری میں بھی معاف نہیں, موت کے وقت بھی معاف نہیں. تو ہماری کیسے معاف ہو جائے گی؟ اس لیے ہمارے کسی بچے کے کسی حال میں نماز نہ چھوڑے. دوسرا کام یہ ہمارے مدد کرنا ہے تاکہ ان کا گھڑتر اچھا ہو جائے. کیا اچھا ہو جائے بولو, ان کا گھڑتر اچھا ہو جائے. اگر گھڑتر اچھا ہو گئے تو تم اتنا اچھے برکت تمہاری زندگی میں ہوگی, تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اس لیے دوسری ہماری نماز کیسے ہم بن جائے, یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہمارے ذمہ کیا ہے, تیسری بات ہمارے ذمہ کیا ہے, تیسری بات ہمارے ذمہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور نماز, جیسے آپ ابھی یہاں فضائل سن رہے ہو, یہ تم سنو گے تو اس کا شوق بنے گا, اس کی رغبت آئے گی, اس کی فکر آئے گی. تو یہ روزانہ آتی رہنی چاہیے. کیوں کہ مارکیٹ میں پتہ نہیں اچرنگی پچرنگی باتیں روز کانوں میں آتی ہے, اسکول کالج میں روز اچرنگی پچرنگی باتیں آتی ہیں. جب آپ نے وہ باتیں سنتا ہے نا تو غیر محسوس طریقے سے ایسا ہی ذہن بن جاتا ہے. تو یہ کیا سنو, ایمان کی قیمت سنو, اعمال کی قیمت سنو, مسلمان کے اللہ کیسے مدد کرتے ہیں, کیا مدد کرتے ہیں, یہ بات روز سننی چاہیے. اس کے لیے ہمارے مدد فرماتے ہیں, جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ بچے ہاسٹل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلیم کرے. کیسے کرے بولو, پانچ سات دس منٹ اللہ جتنے تم کو تعلیم کرو, تعلیم کرو. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر جو مسجد میں وہاں ہاسٹل کے بچے نماز پڑھیں گے نا, ان کے کانوں میں بھی آخرت کے تذکرے پڑ جائیں گے. تو یہ سننے سے کم یہ دل آخرت والا بنے گا, یہ دماغ آخرت والا بنے گا. اور اگر یہ نہیں سنا تو پتہ نہیں دل کیسا بن جائے گا, دماغ کیسا بن جائے گا. ہاں پھر گناہ والا بن جائے گا, گناہ والا. ہم اس دن بڑودا کے گئے تھے, بڑودے ایک گزشتہ سال کا اجتماع میں وہاں کا گزشتہ سال ایک گاؤں میں تھا, ایک بچہ آیا اور کہنے لگے مولانا ہمارے اسکول کے بچے تو اسلام اور کفر اور گناہ کو سمجھتے ہی نہیں. کیوں, کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے ہمارے اسکول میں بچیاں مسلمان ہیں, جب شہری میں جاتی ہیں تو بھی ہندو بچوں کے ساتھ جاتی ہیں. ایسا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, اسلام کیا ہے, کفر کیا ہے, یہ نہیں سنا. اس لیے یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, جب یہ سن لیتے نا تو یہ گناہ نہ کرتے. ہمارے بچے روز یہ سننے چاہیے. اس کے لیے ہمارے مدد فرماتے ہیں کہ روز ہمارے وہاں فضائل کی تھوڑی دیر تعلیم ہو. اگر ہاسٹل کے بچے ہیں تو نماز کے بعد, اور نماز اجتماعی پڑھو. نماز کیسے پڑھو بولو, اجتماعی, اکیلے اکیلے نہ پڑھ لو. ہم تو عالمی نبی کی امتی ہیں. ہم کیسے امتی ہیں بولو, عالم, ہمارے نبی پوری دنیا کے نبی. تو ہم بھی عالمی امتی ہے, ہم سب کے ہمدرد بنیں گے. ہمارے نبی جب تک حیات تھے ہمارے نبی سب کے ہمدرد بھی کرتے تھے. اب ہمارے اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں اور بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں. بیچارے ایسے ایسے گاؤں کے بچے ہیں کہ ان کے گاؤں میں مسجد بھی نہیں, مدرسہ بھی نہیں, تبلیغ کا کام بھی نہیں, اجتماع بھی نہیں. وہ بیچارے جھڑ جھٹ ہوتے ہیں. वो बेचारे ऐसे कैसे रहेंगे ना, तो वो तो ऐसे 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 दिन से जुड़ हो जाएंगे कि उनकी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। तो वो हमारी जिम्मेदारी में है। वो किसकी जिम्मेदारी में है बोलो? हाँ भाई, उसूली बात तो ये है कि भाई जिसका खाना है वो किसको खिलाए, जो भूखा है उसको खिलाओ, जिसके पास पानी है वो कैसे को पिलाए, ऐसे जिसके पास दीन की समझ है वो किसको सिखाए, जिसके पास दीन की समझ नहीं उनको सिखाए। तो हम क्या करें? चौथा काम हमें क्या करना है? चौथा काम हमें ये करना है, हमारी हॉस्टल में जितने मुसलमान बच्चे हैं या हमारे स्कूल में जितने मुसलमान बच्चे हैं, वो बच्चों को ये बातें कौन सिखाएगा जो आपसे अभी हम कर रहे हैं, ये बातें उनको कौन समझाएगा? तो उनको हम और आप समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? तो मेरा भाई है इसलिए समझाएंगे। वो कौन है मुसलमान? अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान वाला ईमान वाले का भाई है। और आगे क्या फरमाया? तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कौन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो मेरे नबी अलैहि सलाम की उम्मत है ये, अगर मैं उसका खैर बनूंगा, हमदर्द बनूंगा, मेरे नबी का कलेजा ठंडा हो जाएगा, हैया भर जाएगा हमारे नबी का। अच्छा भाई बताओ, हमारा भाई सगा भाई उस कॉलेज में पढ़ता हो, हमारा सगा भाई उस स्कूल में पढ़ता हो, वो नमाज ना पढ़े, गुनाह के काम करे, खोटी खोटी काम करे, तो हमारा दिल क्या कहेगा? बोलो हमारा दिल क्या कहेगा? कि कोई है जो इसको समझा कर इन बुराइयों से निकाल दे? बोलो हमारा दिल ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जैसे हमारे भाई की हमें लागणी आती है, ऐसे करने वाला भी हमारा कौन है बोलो भाई? उसकी लागणी भी किसको होनी चाहिए? हमें होनी चाहिए। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उसकी लागणी में हम रोजाना कुछ वक्त पारित करें। कितना वक्त पारित करें? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उसकी लागणी के लिए तुम 10 मिनट रोज पारित करो। कितने मिनट बोलो? 10 मिनट। अरे बोलो 10 मिनट मुश्किल है? अरे बोलो भाई 10 मिनट मुश्किल है? 10 मिनट में क्या करो? दसवीं वाले देखें हमारी क्लास में कौन मुसलमान है, ग्यारहवीं वाले देखें हमारे वहाँ कौन है, बारहवीं वाले देखें हमारे वहाँ कौन है, कॉलेज हर क्लास वाले अपने क्लास के बच्चों को देखें, ओ हमारी क्लास में तो 10 बच्चे हैं, हम 200 शहर के हैं, हमारे पास 3 लिए तो, लेकिन ये दूसरे 8 बच्चे वो ऐसे गाँवों के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, पता नहीं कौन कौन के हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो चलो ऐसा करें, आज से हम टारगेट बनाएं, रोज एक बच्चे से मुलाकात करेंगे। कितने बच्चों से बोलो? एक छोकरे से। क्या करो? उससे दोस्ती करो, दोस्ती करके उसको इन चीजों को समझाओ जो तुम्हें समझाई जा रही है। अगर वो समझे ऐसा नहीं है, नया नया छोकरा है तो पहले दिन ये बातें नहीं समझेगा, तो क्या करो भाई? ये बेचारा अगर इस तरह छोड़ दे तो ये राय और बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इसको किसी तरह समझा कर इसको ले आऊँ। तो अगर दोस्ती है तो तुम्हारी बात मानेगा, दोस्ती नहीं है तो थोड़ी बात मानेगा। तो हमारे मदद करवाते कोई बात नहीं, अगर दोस्ती नहीं है पहले दोस्ती बनाओ। क्या बनाओ बोलो? दोस्ती बनाओ। दोस्ती में आदमी बड़े बड़े काम करता है, रोज पेपर में नहीं आता वो दो दोस्त जमा हो गए और ये कर दिया, दो दोस्त जमा हो गए ये कर दिया, बड़े बड़े काम दो दोस्त मिलकर कर देते हैं, तो दोस्ती में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उनसे दोस्ती करो, दोस्ती करके हमारी नीयत क्या हो? मैं दोस्ती करके इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्ती करो उससे। दोस्ती के लिए अगर तुम्हें अपने जेब का खर्चा करना पड़े तो खर्चा कर डालो। घर से वापस आने के 10 रुपये लेकर गए, 15 रुपये, 20 रुपये लेकर गए, पता नहीं कितने लेकर जाते हैं, तो तुम जो लेकर जाते हो बच्चे 8-10 रुपये तो ले ही जाते होंगे, तो उसमें से 2-5 रुपये उसका लगा दो, 2 रुपये उसका लगाओ, 5 रुपये का उसको चाय पिला दो। जब तुम 5 रुपये की चाय पिलाओगे उसका दिन भर जाएगा। कोई क्या हो गया तो मुझे चाय पिलाता है, तो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अम्मी ने कभी तुम घर से नाश्ता लेकर मान लो जाते हो तो घर का नाश्ता उसके लिए थोड़े से ले जाओ, भाई देखा तो अम्मी के पास में नाश्ता अपने साथ में नाश्ता करेंगे, उसका दिल भर जाएगा। ये क्या बात हो गई, मुझे नाश्ता करवाता है, उसका हैया भर जाएगा, वो खुश खुश हो जाएगा। तो उससे वो क्या करेगा? तुम्हारे स्कूल के माहौल में उसको अच्छी समझ पड़ जाएगी, फिर वो अपने गांव में जाएगा ना, अच्छी समझ वाला होगा, पूरे समाज को गुनाहों से निकाल देगा। अभी हम लोग कचना थे तो एक डॉक्टर आया मिलने के लिए, वो कहने लगा मौलाना हमारे समाज में तुम एकला आया हो। क्यों एकला आया? तो मैं तो मुझे नहीं उड़कते, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। तो कहने लगा ये हम लोग गोधरा ढूंढते थे श्यामरा जी में, ऐसा कह रहा। अच्छा, तो फिर तब मैं यहाँ से वहाँ ढूंढने के लिए आया था, फिर बशीर साहब का उसने नाम लिया और ये कहा कि बशीर साहब ने हमको मुलाकात की थी और हमको मरकज पर बुलाया था, हम मरकज पर आए थे, मैंने तबलीग को पहचान लिया, तबलीग को उड़कते हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि हमको हफ्ते और इज्तम में वो खाना भी खिलाते थे, उन्होंने ऐसा काम किया कि खाना भी खिलाते थे। तो मैं मुझे वहाँ तबलीग की समझ पड़ गई। अब मैं वहाँ तबलीग में जा रहा था हफ्ते और इज्तम में, लेकिन अब मैं सुस्त हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी समाज में भी कोई हर नहीं, उसके लिए समाज के लोग अच्छे नहीं, तो मैं अकेला पड़ गया, मैंने छोड़ दिया। फिर उसको खूब हिम्मत भी पहले दी, एक हो गए एक के दो बनाओ, दो के तीन बनाओ, तीन के चार बनाओ, ऐसा क्यों तुमने छोड़ दिया? बस एक दिन उसको थोड़ा पंपिंग किया ना, दूसरे दिन 6 आदमियों को लेकर आया, उसने MBBS डॉक्टर और MD डॉक्टर, कहा ये हमारे जिले का पहला मुसलमान डॉक्टर है, MD का पहला ही डॉक्टर है। पहले दिन पुलिस से तड़के की बात की, दूसरे दिन 6 को लेकर आया, 6 को लेकर आया। ये इसको कहाँ से समझ पड़ी? इसको वो जो तुम्हारे छोकरों ने छोकरों पर मेहनत की उस पर समझ पड़ गई। जैसे हमारे स्कूल में हमारे विकलांग के बच्चे पढ़ते हैं ना, वो अलग अलग गाँव के होंगे, अगर तुमने इस तरह से दोस्ती कर ली पता नहीं वो आगे जाकर कैसे कैसे बनेंगे, वो तुम्हारे नाम है हमारे नाम है। अब देखो डॉक्टर गाँव का समाज कर, अब वो डॉक्टर बना उसकी इज्जत होगी गाँव में, सब लोग उसको उसके पास इलाज के लिए आएंगे। अब वो काठियावाड़ तो पुराने काठियावाड़, वो तो ग्यारह मानो से वहाँ पे नाथ को घुसने भी नहीं देते और बहुत बुरा मामला करते हैं। अब वहाँ ऐसा वडिल बन गए, अब वो वडिल उसके साथ लोग इलाज कराने आएंगे, अब वो जैसा समझाएगा ऐसा वो समझेंगे। अब एक आदमी कितना अच्छा बनाने का जरिया बनेगा, लेकिन वो सारा उसके नाम अमल में जाएगा जिसने हमारे स्कूल में उसके ऊपर मेहनत की। ऐसे ही आपके देहातों के बच्चे हैं, देहातों के बच्चों को आप मामूली ना समझो, बेचारे सुबह हम गांव की कारदारियाँ सुन रहे थे, ऐसे ऐसे कारदारी आई कैसे कर रहे हैं कि जन्म मस्जिद भी नहीं, मदरसा भी नहीं। अब ऐसे देहातों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आ गए, अब उनको ना नमाज की समझ पड़ती है ना अल्लाह रसूल की बात भी कोई नहीं सुनाता। हम तो ऐसे गाँव में रहते हैं कि जहाँ मस्जिद भी है, मदरसा भी, अजान भी होती है। अब ऐसे गाँवों के बच्चों को कौन समझाएगा कि ऐसे गाँव के बच्चों की हम लोग फिक्र करें। 10 मिनट फारिग करो और उस बच्चे से मिलने की कोशिश करो, रोज एक बच्चे से मिलो, तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे 10 दिन में 10 पूरे हो जाएंगे। लेकिन 100% हमारे स्कूल और हॉस्टल और कॉलेज के बच्चों की मुलाकातें हो जाएंगी, उससे हमारे सारे बच्चे समझ जाएंगे, वो जाए और बर्बाद होने से बच जाएंगे। इसलिए चौथा काम जो आपको करना है, एक तो ईमान के साथ एहसास के साथ रहना, दूसरा नमाज, तीसरी तालीम, और चौथा ये मुसलमान बच्चों की रोज मुलाकात की फिक्र करना। अगर इतना बड़ा मजमा हरकत में हो जाए आप फिक्र कर लें तो इंशाल्लाह किसी स्कूल कॉलेज के बच्चे हमारा जाए और बर्बाद नहीं होगा। इसलिए आप ये भी नहीं बोलोगे इंशाल्लाह हम इसके फिक्र करोगे इंशाल्लाह। पांचवा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि इन बच्चों को माहौल मिले, हमें भी ईमान आमाल के माहौल मिले, उसके लिए क्या करो, अपने हफ्तावार इज्तिमा में आओ। जैसा गुजरात में जुमेरात में होता है, कारोल में जुमेरात में होता है, और जगहों पर जो गश्तों के दिन होते हैं उनमें खुद जुड़ो। देखो पूरा हटवारे हम इसी माहौल में रहते हैं जो दुनिया का गंदा माहौल होता है, कम से कम हटवारे बर्दाश्तों की आवाज़ हमारे कान तक पड़नी चाहिए। इसके लिए जहाँ गश्त का अमल होता है वहाँ गश्त में जुड़ो, और जहाँ गश्त का अमल नहीं है हफ्ता इज्तिमा है हफ्ता इज्तिमा में आओ, खुद आओ, अपने जैसे जितने बच्चे हैं उनको भी लेकर आओ। और जैसे मैंने अभी बात सुनाई ना, अभी मैंने बात सुनाई काठियावाड़ के बच्चे की, वो कहते थे कि हमको दोस्त ले जाते थे खाना भी खिलाते थे। ऐसे दोस्तों से तुम दोस्ती करो और कहो देख तुम्हें तुझे दोबारा आना है, तेरा खाना मेरे घर से आएगा, अपने घर से धोखा खाना ले आओ, तुम्हारा बड़ा खाना वो खाएगा लेकिन उसकी जिंदगी बनाई पर लग जाएगी, तुम्हारी बड़ी आखिरत बन जाएगी। इसलिए खुद भी आओ और अपने दोस्तों को भी उसके आने की दावत दोगे इंशाल्लाह। और पांचवा जो छठा काम जो आपका आखिरी है वो ये है कि छुट्टी के दिनों को अक्सर बच्चे पिकनिक में गुजार देते हैं। ये पिकनिक में जाते हैं तो वहाँ की बुराइयाँ वहाँ की कहानी क्या क्या चीज़ें करके आते हैं। हमारे बच्चों की छुट्टी क्या होता है, बेकार रहता है, उसमें उनका अच्छा घड़ता हो उसकी फिक्र, उसके लिए हमारे पास तबियत की मेहनत है। क्या मेहनत है कि हर अगर आम महीने को तो हर महीने 3 दिन लगाने को कहते हैं, अब ये स्टूडेंट हैं उनसे तो हर 3 दिन नहीं लग सकेंगे, तो हमारे मदद फरमाते हैं अगर वो 24 घंटे लगा सकता है तो 24 घंटे महीने में लगाए, अगर 2 दिन लगा सकता है तो 2 दिन लगाए, 3 दिन लगा सकता है तो 3 दिन लगाए। अगर वो 2 दिन 3 दिन जब अल्लाह के रास्ते में जाएगा, ईमान आमाल और आखिरत को सुनेगा, इसको ईमानी ताकत मिलेगी। क्या मिलेगी बोलो, ईमानी ताकत। लेकिन इस मुसलमान बच्चे का कोई वक्त नहीं लग रहा और पूरा महीना इन्हीं लोगों के साथ जो गुनाहों से भरे हुए लोग हैं बेईमानों के साथ गुजरा, तो बेचारा ये इनके साथ रहते रहते उनका असर उसके अंदर भी आ जाएगा। हाँ उसका असर इनके अंदर भी आ जाएगा। हाँ तो फिर हमारी जिंदगी बात ईमान और इस्लाम का फर्क जिंदगी से निकल जाएगा। हम एक इलाके में भी थे तो वहाँ एक लड़की का कुछ मसला हो गया, तो कहने लगी देखो मेरे इख्तियार में मुझे छोड़ दो, मैं किसी के साथ भी रहूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मसला है। वो ऐसे कहने लगे, कहने लगे ये मेरा अपना पर्सनल मसला है, मैं किसके साथ मैं रहूँ तुम कौन हो पूछने वाला। बच्चे ऐसा क्या नहीं है कि अच्छी बुराई की तमीज़ जिंदगी से निकल जाएगी, खड़े खोटे की तमीज़ निकल जाएगी। इसलिए हमारे अंदर खोटे खड़े की तमीज़ रहे, अच्छे बुरा की तमीज़ रहे, इसलिए ईमान अमल की बात ज़रूर सुने। उसके लिए आसान अमल क्या है कि जहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है वहाँ तुम आओ, और हफ्तावार इज्तिमा में आकर ये ईमान आखिरत के तस्करे सुनो, और जहाँ हफ्तावार इज्तिमा नहीं है वहाँ गश्त के दिन आओ, और गश्त में शरीक होकर ईमान और अमल की आखिरत के तस्करे सुनो, तो उस पर इंशाल्लाह हमें ताकत मिलती रहेगी। करोगे इसके फिक्र इंशाल्लाह। और आखिरी जो बातें होगी है ये आप ये आपकी घृणतर की बातें हो गई। किसकी बातें हो गई? और घृणतर भी ये है कि आप भरने के लिए रहे हो, अच्छे से अच्छा हमारा घृणतर हो। कैसा हो बोलो? अच्छे से अच्छा हमारा भरता हो। आप देखो कि जब आपने एक लाइन पसंद की है तो उस पर उसकी कदर ये उस लाइन की कि उसका हक अदा करो। आप अगर पढ़ने के लिए गए और अगर आपने उसकी नाकदरी की और पढ़ाई में तुमने चेते से चेता नहीं लगाया, दुर्घट नहीं भरे, तो समझ लो कि तुमने पढ़ाई की नाकदरी की है। अल्लाह तुम्हें फेल कर देगा, अल्लाह तुमसे चीज़ ले लेगा। आप देखो सब लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन सब कामयाब नहीं होते, जो कदर करते हैं अल्लाह उनको आगे बढ़ा देते हैं, जो नाकदरी करते हैं अल्लाह उनसे वो चीज ले लेते हैं। ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी क्या है बोलो, ये एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। इसलिए इसको अल्लाह की नेमत समझकर पढ़ाने में अच्छी मेहनत करो, हमारी पढ़ाई में कमजोरी ना हो। हम तो ये कहते हैं भाई जो मदरसा पढ़ने जाए वो अच्छे से अच्छा मदरसा पढ़े, जो पढ़ने के लिए जाए वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, और जो व्यापार करे वो अच्छे से अच्छा व्यापार करे, उसमें अच्छे से अच्छे मदद करो। तो आपकी पढ़ाई में बराबर सुस्ती ना हो, पढ़ाई एकदम कर करो, अच्छे से अच्छी करो। मुसलमान गति नहीं होता, मुसलमान डोबा नहीं होता। मैं छोकरों का सुनता हूँ ये फेल हो गया वो फेल हो गया, मुझे इतना ताजुब होता है, ये चौपड़ियाँ तो बनियों की लिखी हुई है, उसकी बुद्धि की तो नहीं, उसकी चौपड़ी कर कर तो फेल होता होगा। ये चौपड़ी में लोग पाठ लिखे होते हैं वो कहते हैं मैं फेल हो गया। अरे हमको तो अल्लाह ने इतनी बुद्धि दी है कि हम अल्लाह की बात समझ, अल्लाह अल्लाह ने अपना कुरान हमको समझने के लिए दिया, नबी की बात हम समझते हैं और वानिया की बात हम नहीं समझते। ये किसने ईसा ने छगन ने मगन ने पता नहीं कैसे, उसकी बुद्धि कितनी होती है, उसकी बुद्धि कितनी, उसकी चौपड़ी में लिखे हुआ पाठ कितना, इसका उसकी बुद्धि जितना, उसकी बुद्धि जितना, उसकी बुद्धि किताबों में आता है ईमान वाले की बुद्धि सबसे अच्छी होती है। इतको मोमिन की फिरासत सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मोमिन हो तो नहीं, मोमिन गला हो गया, सोने का सिक्का था वो कीचड़ में पड़ गया तो गंदा हो गया, तो सोना लेकिन उसको कीचड़ पड़ गया है तो मेला हो गया और उसको भरना पड़ेगा। ये ईमान वाले की समझ सबसे पावरफुल होती है, सबसे पावरफुल, लेकिन वो गंदी हो गई, कैसी हो गई बोलो, उसको धोनी पड़ती है। तो उसको ईमान ही मेहनत से धो दोगे ना, अल्लाह ऐसे समझ देगा, ऐसे समझ देगा। ये कोई चीज है ही नहीं दुनिया, क्या चीज है। तो मैं बच्चों का सुनता हूँ ये कैसे फेल हो गए, अरे कोई ये टोकरे में कोई गेम नहीं होता होगा, वो होता क्या है, वो होता क्या है, इतनी चौकड़ी होती है एक दिन में उसकी पूरी कर दे जाती है। हाँ उसमें पार्ट होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, क्या होता है उसमें। आप कहो भी कौन सा तुम बड़ो तो तुम बेहतर हो भाई, हमने शादी नहीं की तो बारात में तो गए नहीं, और क्या, और क्या भाई, आप भाई लिखने वाला आदमी जो है, और आदमी की बुद्धि कितनी, आदमी की बुद्धि कितनी, उसकी लिमिट की। जब अल्लाह पाक ने ईमान वाले को तो अल्लाह रसूल की बात समझने की सलाह देती है, इसके बाद बोलो अल्लाह उसके रसूल की, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो ये इसकी कितनी बुद्धि होगी, उससे हम ये बिल्कुल फेल हो गए, तो बात है यार, धूप भर रहा है फेल हो गए, कोई बात हुई यार। क्योंकि हम पढ़ेंगे कमजोर ना पढ़े, अच्छे से अच्छे जम कर हमारी पढ़े उसके लिए मेहनत करें, और अगर हमारे साथियों में कोई कमजोर पड़े ना तो एक दूसरे को समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए भाई, देख ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए, तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो, हमारा बेहतर भी और हमारा घटतर भी। तो एक इंशाल्लाह अगर ये हो गया ना, तो आप जिस दिन बड़े बनोगे ना तो अच्छे बड़े बनोगे, कैसे बड़े बनोगे बोलो, और अगर आपने इसकी फिक्र नहीं की तो बड़े तो बन जाओगे, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे बड़े बनोगे, पता नहीं कैसे कैसे गुनाह, कैसे कैसे बुराइयां जिंदगी। हम तो नहीं चाहते अल्लाह आपके ऐसे बड़े बड़े बने, आपके चाहते अल्लाह आपको अच्छे से अच्छे बड़े बने। तो आप ऐसा चाहते हो भाई, तो सब ये करोगे, करते हो किसके हम फिक्र करेंगे, तो ये किसी के लोगों को गुनाहों में गुजारो, और जो पढ़ाई पूरी हो जाए तो चर्चा में और चिल्लों में जाओ। हर साल हम आपको ज्यादा सुनाते हैं माशा अल्लाह, अपने स्कूल में कॉलेजों में काम शुरू भी कर दिया होगा, इस तरह से करना अगर कर दिया है तो जरा बताओ किस स्कूल ने इसको शुरू किया है। ये बात आपको पिछले साल भी सुनाई थी, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी, 10 साल से सुनाई थी, बोलो सुना थे। तो किसी स्कूल ने ये सब काम शुरू किया है, अच्छा आ जाओ माशाल्लाह, आपने क्या किया।
सलाम अलैकुम, जालत कॉलेज से, अगर हमारे कोई नमाज नहीं है पर कॉलेज से भी कैंप में नहीं जाते, तो हमें साथ ही कैंप हुआ था वडोदरा के अंदर, उसमें भी गया था, तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, गोधरा का साथी भी था, नमाज पढ़ लेते, तो कैंप नेशनल लेवल का था, तो यूपी वाले लोग थे, यूपी वाले देख कर आए कि हमें तो लगता था कि गोधरा कांड हुआ था उसके लिए पूरे गुजरात में कोई मुसलमान का काम ही नहीं हुआ, पर आप नमाज पढ़े तो हमारे साथ वो जुट गए। उसके बाद हमें देखो कश्मीर वाले भी, तो कश्मीर वाले भी हम 25-1 लोग हो गए, तो साथ में नमाज भी पढ़ते जमात से। उसके बाद फिर हमने दो हफ्ते पहले हम गए थे बारडोली कैंप के अंदर, तो वहाँ पर भी हम 3-4 लोग थे, मगर हमने नमाज पर हर वक्त नमाज का टाइम होता था तो हम कैंप छोड़ कर आ जाते थे, तो उसकी कदर वो लोग करते थे कि एक साथी हमारे जमात कर रहे थे, एक साथी हमारा थोड़ा लेट पहुंचा था, तो वो नमाज के बाद बोला कि वो जो चिल्ला कर नीचे से लोग आ रहे थे, उनको पता चला कि ये लोग नमाज में सबको, एक इंसान ने सबको शांत कर लिया था, चुप रहे हो जाओ वहाँ पर, वो नमाज पढ़े नमाज में, वो लोग इस तरह की हमारे मेहनत है। और कॉलेज के अंदर भी हम जैसे ये जैसे जोड़ हुआ है, इसकी भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे उसको जोड़ कर हमने दावत भी दी थी, तो और मस्जिद के अंदर भी इसी मेहनत करके कि हर बस के बाद हम जुटते और हर महीने एक मरतबा पांच स्टूडेंट को भी
अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमावे, और अल्लाह आपके सुन्नत को आपके दुनिया और आखिरत के अच्छे बनने का जरिया बना दे। और भाई किस स्कूल में शुरू हो रहा है, किस स्कूल में कोई काम कर रहे हैं, किस स्कूल में, किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में? देखो वक्त थोड़ा है, अगर कहीं हो रहा है जरा सुना, कोई उस्ताद कर रहे हैं किस स्कूल में कॉलेज में?
हर जगह मौलाना हो रहा है।
तो कोई कारोबारी सुना दे थोड़ा सा, बच्चे कर रहे हैं कुछ मेहनत हो रही जी, जरा सुनाओ जल्दी से, टाइम बहुत थोड़ा है, तुम इतना धीमे करोगे कैसे बनेगा? भाई और कहीं होता है वो भी खड़े हो जाओ, और कहीं कुछ हो रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। सबलपुर कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते, थर्ड ईयर में 10 मुसलमान बच्चे, और जिस जिस तरह मौका मिलता है उस तरह नमाज पढ़ते हैं। सूरत का है छोटा उदयपुर का है, और आठ बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कोटा के अंदर माशाल्लाह जितनी भी हमारी कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग की, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह साथी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जोहर की नमाज आती है तो जोहर की नमाज जमात के साथ करते हैं। इसके अलावा हमारी बड़ी इकबाल स्कूल है, वहाँ पर भी माशाल्लाह जमात के साथ तीन चार जमातें होती हैं, और जमेरात के दिन खसूसी तौर पर अफ्तारी इस्तेमा की दावत देते हैं। इसके अलावा माशाल्लाह अभी माशाल्लाह 70-80 तक पहुंच जाता है स्कूल में से, और दूसरे टीचर अगर सब दिलाकर। इसके अलावा माशाल्लाह गुजरात के अंदर बाहर के स्टूडेंट्स रहते हैं इंजीनियरिंग के लिए और BHMS करने के लिए आए हुए होते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से 20 किलोमीटर पर एक बस्ती है, वहाँ पर कॉलेज में BHMS वाले बच्चे गुजस्ता साल हम साथी में बताया था, और साथी में मुजाकरा करके हमारी माँ हमारी गई, तो माशाल्लाह वहाँ पर बम्बई के साबरकांठा के ऐसे तकरीबन 16 लड़के हैं, 17 लड़के, 2 गोधरा के, 15 उस तरफ, इनको माशाल्लाह वहाँ जाकर बात की, और उनके कॉलेज में भी जो साथी हमारे गए तब पूछ करके फिर इनको गोधरा दावत दी, घर में माशाल्लाह इनको खाने की दावत देकर। साथी ताजपुर में भी बता रहा था, हमारे साथ गाड़ी में था, दो तो गाड़ी लेकर गए थे, गाड़ी वाले बोले हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, हम तो बहुत खुश हो गए कि हम पराए मुसलमान वहाँ के मुंबई के हैं और आप हजरात ने हमें खाना स्पेशल घर बुलाया और खाना खिलाया। फिर और देर उनके साथ बैठना हुआ कॉलेज में, और उन्होंने अंदर हमें लेकर उनके क्लास में बिठाया, और हमने माशाल्लाह बहुत तासुर लिया उसका, और बोले हमको तो ऐसा नहीं लगता था। फिर उसने कहा कि आप कहाँ से? हमने कहा गुजरात से, और ये हमारे साथी हैं, सब तारुफ करवाए, बहुत खुश हुए, अभी भी माशाल्लाह इनके साथ कॉन्टेक्ट में है। इसके अलावा हमारे गोधरा में 17-18 लड़कियाँ BHMS करती हैं, जो हमारी मुख्तलिफ गुजरात के इलाके की है, इनका भी पता चला तो इनको भी माशाल्लाह हमारे यहाँ
इनके जो हॉस्टल में इनका वक्त होता है तो मस्कुरात को पहुँचा कर इनका भी जोर करके इनके साथ भी इख्तिलात करते हैं और पूरे पर्दे के साथ लेकर इनके साथ माशाल्लाह इकराम भी करते हैं। इसके अलावा 5 रूम है गोधरा में जो अलग अलग मुख्तलिफ गुजरात के इलाकों के लड़के रहते हैं, जमातें बनी हुई रहती है हमारी, जो जमातें बनकर इनके पास जाकर इनका इकराम भी करते हैं और इन्हें अफ्तार इस्तिमा में दावत देते हैं। इसके अलावा कश्मीर के लड़के भी हैं 2, उनको भी वहाँ जाकर इनका भी इकराम करते हैं। अभी एक साथी हमारा जो कश्मीर का लड़का है वो बीमार हुआ था, तो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट जाकर ये इनके साथ रात को 3 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो हमारे लड़के माशाल्लाह एक एक नंबर सर उनके साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में इनके साथ भी रहे थे और वो अफ्तार इस्तिमा में माशाल्लाह कश्मीर के कभी कभी आ जाते हैं। वहाँ से हमारे माशाल्लाह मेडिकल वाले जो मजमा रहता है उसमें MR का मजमा रहता है, तो MR हजरात जो होते हैं वो तकरीबन हमारे गोधरा में 55 के करीब है, तो इनको माशाल्लाह महीने की एक इतवार को चौथे इतवार को जोड़ते हैं, खाने के साथ इनका जोर रहता है। अब तक 3 जोर हुए हैं, तकरीबन 80% मजमा पहुंच जाता है वहाँ पर, इनके साथ मुजागरा भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छी फिक्र ली, खिदमत के अतबार से बहुत अच्छी तरह वो लोग लोगों के साथ खिदमत कर रहे हैं, लोगों के साथ हमदर्दी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल पर लिया तो माशाल्लाह इनकी तशहीर हुई थी, तो 3 दिन के लिए मुस्तकिल उन्होंने वक्त पार किया था, अभी 3 दिन भी गए थे। अभी इनका जोर इंशाल्लाह इसी जो 26 तारीख की जनवरी वाली इतवार आएगी उसमें भी इनका जोर रखा है, 2-2.5 घंटे के लिए वो लोग जुड़ते हैं, खाना भी होता है और मुजाकरे के अतबार से भी इनके साथ है। हमारे लोनावाड़ा में अक्सर हर मस्जिद में स्टूडेंट हजरत 2-3-4-5 लोग मस्जिद की जो है जो पाँच काम है अक्सर उसमें फिक्र कर रहे हैं और हर महीने की आखिरी शनिचर को एक मस्जिद में जो स्टूडेंट मस्जिद में जुड़ रहे उनको जमा कर रहे और उनसे पूरे महीने की काम गुजारी क्या काम किया और आगे काम आपको किस तरह करना है और जहाँ पढ़ते हैं उसमें आपको क्या काम करना है उसकी सबकी उनको तरकीब देते हैं और 30-35-40 हाँ जो फाल है वो और आधा पौना घंटा जो जोर में होता है। हाँ अभी ये पिछले महीने में 10-12 स्टूडेंट ने 1.5 दिन लगाया और दिवाली की छुट्टियों में भी 5 की नमाज 10 दिन गई, तकरीबन 90 स्टूडेंट ने 10 दिन लगाए और हमारी जो मस्जिद है मस्जिद अबू बकर उसमें मशवरे में मुलाकातों में मस्जिद की तालीम में जो स्टूडेंट हो वो फीका से जुड़ते हैं, ईशा के बाद 5-6 स्टूडेंट खुद जमा होकर अपने खुद मुलाकात में निकलते हैं और रोजाना एक स्टूडेंट की मुलाकात करते हैं, ऐसे हर मस्जिद के स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा दिलाते हैं। कोशिश ये करो कि महीने में एक मतलब 1.5 दिन लगाते हैं ना वो हर 15 दिन में लगाएं, कितने में हर 15 एक ही बार अपने घर गुजारें एक ही बार अलग रास्ते में गुजारें ताकि उनके कम से कम 2 कपड़े पर पहनने हो जाए, ठीक है भाई और कहीं हो रहा है अच्छा बी एस कर लो कहीं इंशाल्लाह हम सब अपने स्कूलों में करेंगे। अच्छा देखो गोधरा वालों ने सुनाया और लोनावाड़ा वालों ने सुनाया झलौद वालों ने सुनाया सुंदरमपुर में कुछ नहीं हो रहा है भाई, सुंदरमपुर में दोहद में कालोर में अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, सारे बच्चे वहाँ चले गए इबादत खाने में चले गए तो सही दावत नहीं चली थी, अभी किसी ने सुनाया कि बच्चे यहाँ आए थे तो फिर यहाँ से वापस वहाँ गए और वहाँ ठहरे फिर वापस बुलाना पड़ा, तो आपको तो सबको पता है कि ये जोड़ हर साल होता ही है और इसी जगह पर होता है तो इसकी मजबूत दावत चलनी चाहिए, हर साल तो कितने बच्चे होते हैं सर, अभी ये जो कन्फ्यूज़न हुआ तो इसलिए जो आगे पीछे हुए, लेकिन हमेशा पहले से हजरात को समझ लेना चाहिए ये जोड़ कहाँ है और उसी जगह की मजबूत दावत चलानी, ये दावत चलाने वाला खुद कह रहे हैं कि हमको अभी पता चला कि यहाँ आना है और कैसे होगा पहला इसका जिक्र करेंगे और अब ये जो निज़ाम बनाया है उसको सब तय करते हो कि इंशाल्लाह इस निज़ाम से हम अपने स्कूल हॉस्टलों में काम करेंगे और जिसकी पढ़ाई पूरी हो जाए वो तो तय कर लो कि इंशाल्लाह हम 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे फिर अपनी जॉब और सर्विस में ज्वाइन होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है।